दो तिमोथी। पॉल, मेरे प्यारे बच्चे तिमोथी, उसको मैं तुझसे मिलने की अभिलाषा करता हूं कि आनंद से भर जाऊं। मुझे आपके सच्चे विश्वास की याद आती है, वह विश्वास जो पहले आपकी दादी लोइस और आपकी माँ यूनिके में था और अब मुझे यकीन है आप में भी निवास करता है। इस कारण से मैं तुम्हें परमेश्वर के उस उपहार को प्रज्वलित करने की याद दिलाता हूँ जो मेरे हाथ रखने के माध्यम से तुम में है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि शक्ति, प्रेम और आत्मसंयम की भावना दी है। इसलिए न तो हमारे प्रभु की गवाही से लज्जित हो और न मुझसे जो उसका कैदी हूँ, परंतु परमेश्वर की शक्ति से सुसमाचार के लिए कष्ट सहने में सहभागी हो, जिसने हमें बचाया और पवित्र बुलाहट के लिए बुलाया, हमारे कामों के कारण नहीं परंतु इसलिए कि उसका अपना उद्देश्य और अनुग्रह जो उसने हमें युगों की शुरुआत से पहले मसीह यीशु में दिया था और जो अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के माध्यम से प्रकट हुआ है, जिसने मृत्यु को समाप्त कर दिया और जीवन और अमरता को सुसमाचार के माध्यम से प्रकाश में लाया, जिसके लिए मैं एक उपदेशक और प्रेरित और शिक्षक नियुक्त किया गया था। यही कारण है कि मैं इस तरह से पीड़ित हूँ, परंतु मैं लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर विश्वास किया है और मुझे निश्चय है कि जो कुछ मुझे सौंपा गया है वह उस दिन तक उसकी रक्षा करने में समर्थ है। जो खरी बातें तुमने मुझसे सुनी हैं, उनका अनुकरण उस विश्वास और प्रेम के साथ करो जो मसीह यीशु में है। पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे भीतर वास करता है, उस अच्छे निक्षेप की रक्षा करो जो तुम्हें सौंपा गया है। दो तीमुथियुस 1:4-14। आसिया के सब लोग मुझसे फिर गए, उनमें फीगेलुस और हर्मोजेन भी हैं। प्रभु उनेसिफोरस के घराने पर दया करें, क्योंकि वह अक्सर मुझे तरोताजा कर देता था और मेरी जंजीरों से शर्मिंदा नहीं था, लेकिन जब वह रोम पहुंचा तो उसने मुझे गंभीरता से खोजा और मुझे पाया। प्रभु उसे प्रभु से दया पाने की अनुमति दे उस दिन। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसने इफिसुस में कितनी सेवाएं की। दो तीमुथियुस 1:15-18। मसीह यीशु का एक अच्छा सैनिक। जो कुछ तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुना है उससे दृढ़ हो जा। जो कुछ तूने मुझसे सुना है उसे विश्वासयोग्य पुरुषों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखा सकेंगे। मसीह यीशु के एक अच्छे सैनिक के रूप में कष्ट सहें। कोई भी सैनिक नागरिक कार्यों में नहीं उलझता, क्योंकि उसका लक्ष्य उसे भर्ती करने वाले को खुश करना है। किसी एथलीट को तब तक ताज नहीं पहनाया जाता जब तक वह नियमों के अनुसार प्रतिस्पर्धा नहीं करता। कड़ी मेहनत करने वाला किसान ही है जिसे फसल का पहला हिस्सा मिलना चाहिए। यीशु मसीह को याद करो जो मरे हुओं में से जी उठे, दाऊद की संतान, जैसा कि मेरे सुसमाचार में उपदेश दिया गया है, जिसके लिए मैं एक अपराधी के रूप में जंजीरों से बंधा हुआ पीड़ित हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन बाध्य नहीं है। मैं चुने हुओं के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को पाएं जो मसीह यीशु में अनंत महिमा के साथ है। दो तीमुथियुस 2:8-10। वफादार और बेवफा की नियति। जो उसके साथ मरे हैं हम भी उसके साथ जिएंगे। यदि हम धीरज रखेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करें तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी हैं तो वह विश्वासयोग्य बना रहता है, क्योंकि वह स्वयं का इनकार नहीं कर सकता। भगवान के सेवकों को निर्देश, उन्हें इन बातों की सुधि दिला और परमेश्वर के सामने आज्ञा दे कि वे बातों के विषय में झगड़ा न करें जिनसे कोई लाभ नहीं होता वरन सुनने वालों का नाश होता है। टिप्पणी, आज शब्दों को लेकर झगड़ा शायद ज्ञान के स्तर, वातावरण, नौकरी से संबंधित अनुभवों और क्षमता के कारण होता है, जिसके परिणामस्वरूप अलग अलग व्याख्याएं होती हैं जिनमें से कोई भी सही नहीं हो सकती है। झगड़ा कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर की जांच और चर्चा करने की अनिच्छा और यह मांग करना प्रतीत होता है कि मेरी समझ ही एकमात्र अर्थ है। अपने आप को परमेश्वर के सामने स्वीकृत एक ऐसा कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करो जिसे लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो सत्य के वचन को सही ढंग से काम में लाता है। अपमानजनक प्रलाप से बचें, क्योंकि यह लोगों को और अधिक अधार्मिकता की ओर ले जाएगा और उनकी बातें गैंग्रीन की तरह फैल जाएंगी। उनमें हुमिनियस और फिलेतुस भी हैं, जो यह कहकर सत्य से भटक गए हैं कि पुनरुत्थान हो चुका है। वे कुछ लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचा रहे हैं। भगवान की दृढ़ नींव इस मुहर के साथ खड़ी है, प्रभु उन्हें जानते हैं जो उनके हैं, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से दूर हो जाए। अब एक बड़े घर में न केवल सोने और चांदी के बर्तन होते हैं, बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी होते हैं, कुछ सम्मानजनक उपयोग के लिए, कुछ अनादर के लिए। इसलिए यदि कोई अपने आप को अनादर से शुद्ध करे तो वह आदर का पात्र ठहरेगा और पवित्र ठहरेगा और घर के स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। युवा जुनून से भागो और उन लोगों के साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का पीछा करो जो शुद्ध हृदय से भगवान को बुलाते हैं। मूर्खतापूर्ण अज्ञानी विवादों से कोई लेना देना नहीं है, आप जानते हैं कि वे झगड़े पैदा करते हैं। प्रभु के सेवक को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी के प्रति दयालु होना चाहिए, सिखाने में सक्षम होना चाहिए, धैर्यपूर्वक बुराई को सहन करना चाहिए, अपने विरोधियों को नम्रता से सुधारना चाहिए। ईश्वर शायद उन्हें पश्चाताप प्रदान करें जिससे उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हो और वे शैतान की इच्छा पूरी करने के लिए उसके द्वारा पकड़े जाने के बाद उसके जाल से बच सकें। 2 तीमुथियुस 2:11-26। कठिन समय की चेतावनी। परंतु यह समझ लो, अंतिम दिनों में कठिनाई का समय आएगा, क्योंकि लोग स्वार्थी, धनलोलुप, घमंडी, अहंकारी, गाली गलौज करने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, हृदयहीन, अप्रसन्न, निंदक, संयमहीन, क्रूर, भलाई न चाहने वाले, विश्वासघाती, लापरवाह, क्रोधी होंगे। दंभ, ईश्वर के प्रेमियों के बजाय सुख के प्रेमी, ईश्वरत्व का आभास रखते हैं लेकिन उसकी शक्ति को नकारते हैं। ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि उनमें से ऐसे लोग हैं जो घरों में घुस जाते हैं और कमजोर स्त्रियों को पकड़ लेते हैं, पापों के बोझ से दबे हुए हैं और तरह तरह की वासनाओं से भटकते हैं, जो हमेशा सीखते रहते हैं और कभी भी सच्चाई का ज्ञान नहीं पा पाते। जिस प्रकार जैनेस और जम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया, उसी प्रकार ये लोग भी सत्य का विरोध करते हैं। वे मन से भ्रष्ट और विश्वास के विषय में अयोग्य मनुष्य हैं, परंतु वे बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनकी मूर्खता सबके सामने स्पष्ट हो जाएगी, जैसा कि उन दो व्यक्तियों की थी। 2 तीमुथियुस 3:1-9। आने वाला उत्पीड़न। हालांकि तुमने मेरी शिक्षाओं, मेरे आचरण, जीवन में मेरे उद्देश्य, मेरे विश्वास, मेरे धैर्य, मेरे प्यार, मेरी दृढ़ता, मेरे उत्पीड़न और पीड़ाओं का पालन किया है जो एंटियोक, इकोनियम और लिस्ट्रा में मेरे साथ हुए थे, जो उत्पीड़न करते हैं मैंने सहा, तो भी यहोवा ने उन सब से मुझे बचाया। सचमुच जो मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन जीने की इच्छा रखते हैं वे सब सताए जाएंगे, जबकि दुष्ट लोग और धोखेबाज धोखा देते और धोखा खाते हुए बद से बदतर होते चले जाएंगे। 2 तीमुथियुस 3:10-13। बाइबल शिक्षाओं का ज्ञान। परंतु जहां तक तुम्हारी बात है, जो कुछ तुमने सीखा है और जिस पर दृढ़ विश्वास किया है उस पर चलते रहो, यह जानते हुए कि तुमने इसे किससे सीखा है और बचपन से पवित्र ग्रंथों से कैसे परिचित हुए हैं, जो तुम्हें मसीह यीशु में विश्वास के माध्यम से मुक्ति के लिए बुद्धिमान बनाने में सक्षम हैं। सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की ओर से रचा गया है और शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता के प्रशिक्षण के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सक्षम हो और हर अच्छे काम के लिए तैयार हो। दो तीमुथियुस 3:14-17 है। टिप्पणी, जिस समय पॉल ने तीमुथियुस को लिखा था उस दौरान सभी धर्मग्रंथ सेप्टुआजेंट थे, जो हिब्रू अरामाइक पुराने नियम का ग्रीक अनुवाद था। वचन का प्रचार करें। मैं तुम्हें परमेश्वर और मसीह यीशु की उपस्थिति में, जो जीवितों और मृतकों का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और उसके राज्य के द्वारा आदेश देता हूँ, वचन का प्रचार करो, सुसमाचार, प्रायश्चित, बलिदान, दफन, पुरुत्थान और स्वर्गारोहण, तैयार रहो सीजन में और सीजन के बाहर, पूरे धैर्य और शिक्षा के साथ डांट डांट और उपदेश दे। 2 तीमुथियुस 4:1-2। टिप्पणी, शुरुआत में शब्द था और शब्द भगवान के साथ था और शब्द भगवान था। यूहन्ना 1:1। इसलिए जो वचन का प्रचार करता है वह मसीह का प्रचार करता है, उसके प्रायश्चित, बलिदान, दफन, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण। क्योंकि ऐसा समय आता है कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, परंतु कान खुजलाने के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे और सत्य को सुनना छोड़कर मिथ्या बातों में लग जाएंगे। जहां तक आपकी बात है, सदैव शांतचित्त रहो, कष्ट सहो, प्रचारक का कार्य करो, अपना मंत्रालय पूरा करो। 2 तीमुथियुस 4:3-5। पॉल के अंतिम दिन। क्योंकि मैं पेयबली के लिए उंडेला जा चुका हूँ और मेरे प्रस्थान का समय पहुँचा है। मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास बनाए रखा है। अब से मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु धर्मी न्यायाधीश मुझे उस दिन देगा, और न केवल मुझे बल्कि उन सभी को भी जिन्होंने उसके प्रकट होने को पसंद किया है। जल्दी मेरे पास आने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि देमास ने इस संसार से प्रेम करके मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है, क्रेसेंस गैलाटिया चला गया है, टाइटस डालमेटिया चला गया है, युग अकेला मेरे साथ है। मार्क को पकड़ो और उसे अपने साथ ले आओ, क्योंकि वह मंत्रालय के लिए मेरे लिए बहुत उपयोगी है। मैंने तुखिकुस को इफिसुस भेजा है। जब तुम आओ तो वह लबादा जो मैं त्रोआस में कर्पुस के पास छोड़ गया था, और पुस्तकें और सब चर्मपत्र भी ले आना। अलेक्जेंडर ताम्रकार ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया, यहोवा उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तुम उससे सावधान रहना, क्योंकि उसने हमारे संदेश का कड़ा विरोध किया है। मेरे पहले बचाव में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ, लेकिन सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया। उन पर यह आरोप न लगाया जाए, परंतु यहोवा मेरे साथ खड़ा रहा और मुझे बल दिया कि मेरे द्वारा संदेश का पूरा प्रचार हो सके और सब अन्य जाति उसे सुन सकें। इस प्रकार मैं सिंह के मुंह से बच गया। प्रभु मुझे हर बुरे काम से बचाएंगे और सुरक्षित रूप से अपने स्वर्गीय राज्य में लाएंगे। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। सर्दियों से पहले आने की पूरी कोशिश करो। प्रभु आपकी आत्मा के साथ रहें। कृपा आप पर बनी रहे। 2 तीमुथियुस 4:6-22। 2 तीमुथियुस के मुख्य बिंदु। जो कुछ तुमने मुझसे सुना है उसे उन वफादार लोगों को सौंप दो जो दूसरों को सिखाने में सक्षम होंगे। भगवान के सेवकों को उनके कार्य के लिए खुद को तैयार करना है और धैर्य रखना है, उनके वचन के अंकुरित होने और बढ़ने की प्रतीक्षा करनी है। स्वर्ग मसीह में रहने वालों की नियति है। जो विश्वासघाती सांसारिक जीवन में लौटेंगे उन्हें स्वर्ग से वंचित कर दिया जाएगा। सेवकों को मसीह का प्रचार करना है, उनके प्रायश्चित, बलिदान, दफन, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण। पृथ्वी पर अपने अंतिम दिनों के लिए स्वयं को तैयार करें। प्रश्न, चर्च के भीतर अनाप शनाप, बकवाद और झगड़ों का परिणाम क्या होता है?